الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب حفظ السر وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں ایک اور باب قائم کرتے ہیں، غالباً یہ پہلے بیان نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں باب حفظ السر، کسی کے راز کی بات کی حفاظت کرنا، کسی کے راز کو کسی کے سامنے نہیں کھولنا. اگر کسی مرد یا عورت نے اپنے کسی معاملے میں، اپنے کسی بات میں، یا آپ کے ساتھ کیے گئے کسی سلوک میں آپ سے امید قائم کی کہ آپ اس کو راز میں رکھیں گے، کسی کو نہیں بتائیں گے، کسی کے سامنے اس کو اظہار نہیں کریں گے، تو پھر سامنے والا یوں کہیں کہ دیکھو یہ بات راز کی ہے، کسی کو بتانا نہیں، تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس راز کی بات کو چھپائیں، کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کریں. ہاں اگر وہ بات شریعت کے خلاف ہے یا پھر ایسی بات ہے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے تو پھر اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے. جیسے کسی نے کہا دیکھ کسی کو بتانے میں کل فلاں کو مارنے والا ہوں، تو اس میں کسی کا نقصان ہے. تو یہ راز کی بات تم کسی کو بتلانا مت. اب آپ بھی یہ سوچے کہ شریعت میں راز کی بات کی بھی اتنی تاکید ہے. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو بتلایا ہے، تو پھر شریعت کی بات کو سامنے رکھ کر کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ سامنے والا یوں کہیں کہ یہ میری راز کی بات ہے، کسی کو بتلانا نہیں. صاف صاف اس نے کہہ دیا تو اس کو راز ہی سمجھا جائے گا کہ بھی یہ راز کی بات ہے، اس کی حفاظت کرنا، کسی کو نہ بتلانا ضروری ہے. اگر اس کو بتلائیں گے تو پھر یہ گناہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں شریعت میں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے جن آداب کی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دی، ان میں سے ایک اخلاق اور ایک خلق یہ ہیں کہ راز اور بھید سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا بھی ضروری ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. حضرت حذیفہ بن یمان صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको राज की बात बतलाई थी, किसी और साहबों को नहीं बतलाई, एक ही साहबी को, हजरत हुज़ैफा बिन यमान को। और वो कब बताई थी? गज़वे तबूक में मौके पर बाज मुनाफिकीन मदीना मुनव्वरा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे और उन्होंने साजिश की, स्कीम प्लानिंग की कि तबूक में जाने का रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में पहाड़ है और बहुत ही कठिन रास्ता है, वेरी वेरी हार्ड टू ट्रेवल। सो उन पहाड़ी में से किसी एक पहाड़ी पर अंधेरा आता है, डार्क, ऐसा पहाड़ों के पास भी अंधेरा होता है। तो हम मुनाफिकीन ने आपस में बात की कि उस पहाड़ी के पास जब हम पहुंचेंगे अंधेरे के पास, क्योंकि वो मुनाफिक भी लश्कर में शामिल थे आप सल्लल्लाहु के साथ, यानी जाहिर में मदद करने के लिए कि हम भी आ रहे हैं ताकि सहाबा हम पर हमला न करें। तो मुनाफिक किसको कहते हैं? जबान से कलमा पढ़े लेकिन दिल में तो कलमा नहीं है, लेकिन वो लोग भी नमाज पढ़ते थे दिखलाने के लिए, और वो भी जोहर असर मगरिब ईशा फजर गाय, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, बस बतलाने के लिए कि हम भी मस्जिद में आते हैं। और इसी तरीके से चूंकि वही लोग थे जिन्होंने यूं कहा था, ये सहाबा बेवकूफ है, नाउज बिल्ला, क्या हम इन जैसा ही मान लाए? अल्लाह ने कुरान में कहा कि मेरे सहाबा बेवकूफ नहीं, तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, कुरान में अल्लाह ने कहा। अब इस पहाड़ी के पास जब हम पहुंचेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इन पर हमला कर देंगे सफर में, और इनका काम पूरा कर देंगे, इनको शहीद कर देंगे। और वो सारे मुनाफिक सफर में थे, लश्कर में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस प्लानिंग को जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया कि इस सफर के अंदर ये फुला फुला मुनाफिकीन भी है, इनकी ये प्लानिंग है कि फुला पहाड़ी के पास आपको शहीद करना चाहते हैं। और अल्लाह पाक ने उन मुनाफिकीन के नाम भी बतला दिए कौन कौन थे उस मीटिंग में। ये तो चुपचाप मशवरा किया इन्होंने, पांच छह जो मुनाफिकीन थे उन्होंने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नामों का जिक्र, कौन कौन मुनाफिक है जिन्होंने ये प्लानिंग की है, किसको बतलाया? सिर्फ हजरत हुज़ैफा बिन यमान को, न हजरत अबू बकर को, न हजरत उमर को, न उस्मान, किसी को नहीं। और आपने उनका नाम भी बतला दिया और यूं कहा कि मुझ पर वही आ गई और मुझे बतला दिया गया है, और ये लोग ईमान पर नहीं मरेंगे, यूं भी कह दिया, ये लोग मरेंगे बगैर ईमान के। और जिन जिन लोगों को मुनाफिक तो थे लेकिन बाद में उनको तौबा नसीब होगी, उनका नाम नहीं बतलाया, सिर्फ उन लोगों के नाम बतलाए कि ये मुनाफिक है, हुज़ैफा मैं तुम्हें को बतलाता हूं और किसी को नहीं, और ये मुनाफिक मरेंगे तो ईमान के बगैर मरेंगे। क्योंकि बहुत सारे मुनाफिक वो है जिनको तो अल्लाह पाक ने बाद में तौबा की तौफीक अता फरमा दी और उनकी मौत ईमान पर आई थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनकी मौत ईमान पर नहीं आई, मुनाफिकत पर आई। तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जनाजे की नमाज पढ़ने से मना किया था, इनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना है। और उन्हीं में से उन मुनाफिकीन के सरदार का नाम था अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल। मुझे खास एक बात बतलानी है तो मैं एक उसका इंट्रोडक्शन बयान करता हूं कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। आज तो बहुत आसान है, बस किसी ने कुछ कहा, देखो किसी को कहा नहीं, उसने उसको बतला दिया, तू भी किसी को कहना नहीं, उसने उसको बतला दिया, तू भी किसी को कहना नहीं, उसने मुझे कहा है, वो कहते कहते वो बात दोबारा उसी के पास आ जाती है। समझ में आई बात? तो उसके अब्दुल्लाह इब्न उबई ये मुनाफिकीन का सरदार था, लेकिन उसका बेटा था, उसका नाम भी अब्दुल्ला, बेटा पक्का साहबी है और बाप सारे मुनाफिकीन का सरदार। तो जाहिर में अपने आप को मुसलमान कहता था कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन वो सारे मुनाफिकीन कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं थे, क्योंकि उनसे ईमान वालों की जान माल महफूज नहीं थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ वो गैर मुस्लिम जैसा बर्ताव नहीं करते थे, क्योंकि वो जाहिर में तो मुसलमान है। इसलिए अब बहुत सारे ऐसे वाकयात आए, जैसे अब्दुल्ला इब्न उबई का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, आप आए और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए। हालांकि उसका नाम भी तो अल्लाह ने बतला दिया था। हुजूर सासन तशरीफ ले गए, जब जनाजा रखा तो आप नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े, नमाज शुरू करना चाहते थे कि हजरत उमर आगे बढ़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता पकड़ा और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, उसने तो फुला वक्त ये हरकत की थी, उसने फुला वक्त आपको शहीद करने के लिए ये किया था, फुला किया था, फुला वक्त इस्लाम के खिलाफ उसने जो जो काम किए वो हजरत उमर ने सारे गिनवाए। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि अगर 70 मर्तबा भी अल्लाह मुझे रोके तो मैं उससे ज्यादा उसके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। हालांकि मुनाफिकीन का सरदार था, लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में कहा इस्तगफिरू, अगर तुम 70 मर्तबा भी करो तो भी अल्लाह माफ करने वाला नहीं है। 70 मर्तबा नमाज पढ़ो, मगफिरत की दुआ करो, ऐ मेरे नबी, फिर भी अल्लाह माफ करने वाला नहीं, तो आप उनकी जनाजे की नमाज क्यों पढ़ाते हैं? शासन सुनते रहे, खामोश रहे। सो नबी शासन ने कहा अल्लाह पाक ने साफ साफ मुझे मना तो नहीं किया कि इसकी नमाज नहीं पढ़ना है, आपने नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए या यूं कह दीजिए कि अगर खड़े होए और फौरन आयत उतरी वला तुसल्ली, नमाज नहीं पढ़ो उनमें से किसी का और न उनकी कब्र पर खड़े रहो मकबरत की दुआ के लिए, वला तकुम अला कब्री, कुछ नहीं। तो अल्लाह पाक ने उस सफर में आपको मुनाफिकीन कौन कौन है, किसकी मौत निफाक पर आने वाली है, सब बतला दिया। और वो सारा राज सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बतलाया था? हजरत हुज़ैफा बिन यमान को बतलाया था। अब सहाबा पूछते भी थे कौन कौन मुनाफिक है, लेकिन हजरत हुज़ैफा ने किसी के सामने नबी के राज को जाहिर नहीं किया। इसीलिए हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का लकब क्या था, निकने लकब कुनियत क्या थी, साहिब सिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की हिफाजत करने वाले साहबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेद को छुपाने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार साहबी थे वो, हर राज की बात उनको बतला दो। सो उनको मालूम था कि फुला फुला की मौत ईमान पर नहीं आएगी, अल्लाह के नबी ने मुझे बतलाया है। तो हजरत उमर हर वक्त जब भी कोई आदमी मदीना मुनव्वरा में इंतकाल करता था तो हजरत उमर देखते कि देखो उस जनाजे में हजरत हुज़ैफा है या नहीं, क्योंकि वो तो बताते नहीं थे कि कौन कौन मुनाफिक है, लेकिन अगर हजरत हुज़ैफा होते तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन भी जाते, और अगर हजरत हुज़ैफा नहीं होते थे तो हजरत उमर भी उस जनाजे में नहीं जाते थे। सो सहाबे किराम हजरत हुज़ैफा को देखकर अंदाजा लगा लेते थे कि इसमें मुनाफिक कौन है और मुनाफिक कौन नहीं। जनाजे की नमाज से मालूम होता है कि अगर कोई आदमी कोई राज की बात बतलाए तो ये अमानत है। ये क्या है? अमानत है। आप पर भरोसा करके उसने आपको बतलाया कि देखो भाई ये हम दोनों की बात है, किसी को नहीं बतलाना। ये बात आमतौर पर मर्दों में तो कम लेकिन औरतों में ज्यादा होती है। इसलिए मैं अभी 15-20 मिनट पहले बैठे बैठे सोच रहा था, किताब यहां से वहां देख रहा था, मैंने कहा ये मौजू हमारा रियाजुस सालीन में कभी बयान नहीं हुआ, उसको बयान करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वाउफु बिल अहद इन्नल अहद कान मसूला, वादा पूरा करो, एग्रीमेंट है उनको पूरा करो। किसी से एग्रीमेंट किया है इसलिए कि कयामत के दिन अगर आपने वादे के खिलाफ किया तो फिर उसके बारे में पूछ होगी कि आपने उस वादे का हक अदा किया या नहीं। आपसे वादा किया था भाई मेरी राज की बात हम दोनों जानते हैं, किसी को नहीं बताना, और आपने वादे को तोड़ दिया तो जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हदीस में मुस्लिम शरीफ में जो आपके सामने मैंने हदीस पढ़ी, जो हाँ यहां इमाम नबी रहमतुल्लाह अलैहि इस बाब में बयान करते हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشر الناس عند الله, मेरी माए और बहने ये सब बातें हमें दर्स में ही मिलती है, बहुत कम हमको बयानों में सुनने में मिलेगी। ये सारी हदीस की किताब है और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें बयान की है। इसीलिए हमारे उलमा दौड़ दौड़ कर जाते थे हदीस को सीखने के लिए, दौड़ दौड़ कर जाते थे हदीस को सीखने के लिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक शहर में दर्स देते थे, एक शहर में दर्स देते थे, और फिर दूसरे शहर वालों ने कहा हमारे यहां भी दर्स दो। कहा यहां से वहां जाऊंगा मेरा तो टाइम पूरा हो जाएगा फिर वापस आऊंगा। फरमा नहीं, हम आपके सवारी का इंतजाम कर देते हैं, आपके लिए गाड़ी का यानी ऊंट का उस जमाने में सवारी थी इंतजाम कर देते हैं, हमारी तरफ से आप उस पर बैठे और जल्दी जल्दी आए, हमारे यहां भी दर्श दो और फिर वापस अपने शहर में चले जाओ। देखो उस जमाने में हदीस के दर्श पर कितना शौक था, दौड़ दौड़ कर जाते थे। पूरा शहर जो है वो चाहता था कि हमारे यहां भी दर्श हो, क्योंकि हरेक का वहां से यहां आना और दर्श में बैठना मुश्किल था। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए सवारी और गाड़ी का यानी उस जमाने में ऊंट का इंतजाम कर दिया गया और सवारी पर बैठ करके तशरीफ ले जाते थे। उस जमाने में जब ये जाते थे एक जगह से दूसरी जगह दर्श देने के लिए, यहां दर्श दिया फिर ऊंटनी पर बैठे वहां दर्श दिया, होता है जैसे आज भी होता है, कभी हम यहां दर्श देते हैं कभी वहां दर्श देते हैं। एक घंटे में हमारा दर्श चलता है बर्मिंगम में और एक घंटे के बाद दर्श चलते हैं अमेरिका में और एक घंटे के बाद यूके में यहां ब्रेंटफोर्ड में, होता है। लेकिन उस जमाने में तो घर से नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। अब तो गाड़ी का इंतजाम है, यहां से वहां वहां से यहां का दर्श होता है। सुभान अल्लाह, अमेजिंग है। तो उस वक्त एक आलिम आया और आने के बाद कहा हजरत मैं आपसे एक किताब हदीस की पढ़ना चाहता हूं, एक किताब हदीस की। फरमाया मेरे पास टाइम ही नहीं है। उन लोगों को मैंने टाइम दिया, वो भी उन लोगों ने सवारी का इंतजाम किया तो मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा वापस आ जाऊंगा। तो कहा हजरत आप यहां इस शहर में दर्श देंगे और जब आप ऊंटनी पर बैठेंगे और उस शहर में जाएंगे तो रास्ते में जो आप ऊंटनी पर बैठकर जाएंगे मैं आपकी ऊंटनी के पीछे पीछे चलूंगा और आप मुझे सबक पढ़ाते चलिए। कितना शौक, हदीस का कितना शौक है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनने का सवाब 40 नफल हज के बराबर है। अल्लाह के नबी का दर्जा इतना बड़ा है, उनकी बातों की वैल्यू इतनी ज्यादा है। इसीलिए ये बातें हदीस में मिलती है, बयानों में बहुत कम सुनने की मिलेगी। उन बातों में से एक बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है इन मिन अशर الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل, कयामत के दिन अल्लाह के यहां सबसे बड़े मर्तबे वाला और सबसे बदतरीन आदमी वो है। सो सबसे बुढ़े मर्तबे वाला, सबसे अशर का माना होता है सबसे ज्यादा नास्टी यू कह सकते हैं, सबसे ज्यादा बुरा आदमी, द बैड पर्सन ऑन द डे ऑफ कयामत कौन है? अल्लाह के नबी ने बताया कि जो तन्हाई में अपने बीवी के साथ जिमा करने के लिए बेपर्दा हुआ और बीवी भी शौहर के लिए बेपर्दा हुई, यानी मियां बीवी का आपस का मसला जाकर तीसरे को बताया, मियां बीवी का आपस का मसला क्या है जाकर तीसरे को बताया, फिर वो आदमी वो औरत उसका भेद ये उसका भेद खोलते हैं तीसरे के सामने। फरमाया ये है शौहर होने की हैसियत से तन्हाई में जो मामला अपनी बीवी के साथ अंजाम दिया जाता है या बीवी अपने शौहर के साथ जो अंजाम देती है उसका कयाम किसी के सामने इजहार करने वाला और इजहार करने वाली औरत कयामत के दिन बदतरीन लोगों में से होंगे। ये सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की। आगे एक और हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर अन उमर हीनत तअयमत बिन्तुहु हफ्सा قال لقيت عثمان ابن عفان, ये हदीस बुखारी शरीफ में है। हदीस का तर्जुमा सुनिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर एक राज का वाकया सुनाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर कौन है? हजरत उमर के बेटे हैं। कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी मेरी बहन हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा जो जिनका निकाह हुआ था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शी वाज मैरिड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत हफ्सा बाद में उनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था, लेकिन उससे पहले हजरत हफ्सा का निकाह खुनैस इब्न हुज़ैफा के साथ हुआ था, लेकिन वो इंतकाल कर गए तो चूंकि ये तो बदर के अंदर में भी शरीक थे, गज़वे उहद में भी ये जख्मी हो गए वुंडेड हो गए, और हजरत हफ्सा के यूं कह दो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सनी लोग शहीद हो गए, इंतकाल हो गया, तो हजरत हफ्सा बेवा हो गई विडो हो गई। जब इद्दत पूरी हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हजरत उस्मान के पास गया। किसके पास? हजरत उमर गए हजरत उस्मान के पास और उनसे कहा अगर तुम चाहो तुम्हारा दिल चाहे तो मैं अपनी बेटी हफ्सा का निकाह आपसे करा दूं। किसको कहा? ये तो आजकल लोग इसको ऐब समझते हैं, अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का देखा तो आप आगे चलकर पूछ सकते हैं, यार मैं कैसे पूछूं मेरी बेटी का किसी को, हजरत उमर से बड़ा कौन हो सकता है? जिनके बारे में फरमाया अगर मेरे बाप कोई नबी बन सकता है तो उमर बन सकता है, लौकान बादी नबी लकान उमर। आगे चलकर हजरत उमर हजरत उस्मान से पूछते हैं अगर तुम्हारा दिल चाहे तुम्हें पसंद हो तो मैं अपनी बेटी हजरत हफ्सा को तुम्हारे निकाह में दे दूं। गोया हजरत उमर अपनी लड़की का खुद पैगाम लेकर हजरत उस्मान, हजरत उस्मान जैसे सहाबी कौन हो सकते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे घर में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला नहा के मकान में, और दरवाजा किसी ने नॉक किया, फरमा जाओ देखो कौन है, तो खादिमा ने खोला तो काबू बकर है, फरमा आने दो। अब बैठे हुए थे, आगे हजरत अबू बकर, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाजा नॉक किया, कहा कौन है जाकर देखो, तो कहा हजरत उमर है, कहा आने दो। हजरत उमर भी आ गए मकान में, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने नॉक किया जाकर देखो कौन है, कहा हजरत उस्मान है, कहा ठहरो ठहरो आप बिल्कुल सही बैठ गए, अच्छी तरह कपड़े अपनी पिंडली से नीचे रख दिए, यानी यहां ऐसे पकड़ नीचे तक रख दिए और बराबर बैठ गए, कहा बुलाओ उनको। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मजलिस के बाद पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू आए तो आप वैसे बैठे रहे, हजरत उमर आए तो वैसे बैठे रहे, हजरत उस्मान आए तो आप बिल्कुल बराबर बैठ गए, कपड़े भी सीधे कर लिए, क्या बात है? फरमाया उस्मान से तो सातों आसमान के फरिश्ते शर्म करते हैं, मैं को शर्म ना करूं। ऐसे आदमी के सामने निकाह में अपनी बेटी का देना बहुत बड़ी बात है। जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बेटियां दी, एक का इंतकाल हुआ तो दूसरी बेटी की शादी करवाई हजरत उस्मान के साथ, जब उनका भी इंतकाल हो गया रुकैया का, तो कहा उस्मान अगर मेरे पास 10 बेटियां होती तो एक के बाद दूसरी सबका निकाह आपसे करवाता। हजरत उस्मान थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनी लोग थे। तो अगर कोई अच्छा लड़का हो जो आपको देखे कि माशाल्लाह अखलाक वाला है नेक साले है, तो आगे चलकर अपनी बेटी का अगर पैगाम पूछे तो कोई बुरी बात नहीं, हम उसको बुरा समझते हैं, इस्लाम बुरा नहीं समझते। अगर बुरा होता तो उमर जैसे आगे चलकर पैगाम लेकर न जाते। हजरत उमर पैगाम लेकर जा रहे हैं हजरत उस्मान के पास। हजरत उस्मान ने फरमाया मैं सोचूंगा, थोड़ा इस्तिखारा करूंगा, सोचूंगा। फिर चंद दिन गुजरने के बाद हजरत उस्मान मुझसे मिले और कहा, फरमाया हजरत उस्मान ने सोचा, सोचने के बाद अब्दुल्ला से कहा, बेट यानी हजरत हफ्सा के, हजरत उमर के बेटे से, कि मैंने सोचा लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा अभी निकाह करने का इरादा नहीं है। तो हजरत उमर फरमाते हैं उसके बाद मैं गया किसके पास? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। वो भी बहुत जबरदस्त गया, चूंकि वो थोड़ी उम्र में बड़े थे, और उनसे कहा अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी हफ्सा को तुम्हारे निकाह में देने के लिए तैयार हूं। किनसे पूछा? हमारे यहां तो बेटी की अगर तलाक हो जाती है तो बेचारी बैठी रहती है, हम चाहते ही नहीं कि उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करे। ओ शैतान के साथ शैतान फिर खेलता रहता, अकेली लड़की क्या करेगी, जवान है, इसलिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो आगे चलकर पूछना चाहिए। हमको तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, बैठे रहे बैठे रहे, पब कोई नहीं आता रिश्ता, जब रिश्ते आए तो इनकार करती रही। इसलिए अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए अल्लाह के सामने दो रकात पढ़कर, दो नाम है अल्लाह तबारक व ताला के, दो नाम है, तो उन दो नामों को 313 बार रोजाना पढ़ना चाहिए, या तो सूरह मरियम को पढ़े रोजाना, सूरते मरियम को पढ़े, या सूरत रहमान को पढ़े। मौलाना मक्की साहब ने मुझे कहा हरम में सूरत रहमान को रोजाना 3 मरतबा पढ़े, इसलिए कि सूरत रहमान कुरान की दुल्हन है। सूरत रहमान क्या है? नबी साहब फरमाते कुरान की दुल्हन है। तो जो आदमी इस सूरत को बार बार पढ़ता है उसकी लड़की के लिए लड़के के लिए अल्लाह उसको दुल्हा दुल्हन बनाएंगे। तो ये पढ़े, या सूरह मरियम पढ़े, या फिर अल्लाह के दो नाम हैं या करीम या रहीम 313 बार पढ़े, इंशाअल्लाह बच्चियों के रिश्ते आएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास मैं गया और कहा अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी का निकाह करा दूं आपसे, आप चाहें तो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, कोई जवाब नहीं दिया, न हां कहा ना ना कहा। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे उन पर हजरत उस्मान के मुकाबले में ज्यादा नाराजगी हुई, क्योंकि हजरत उस्मान ने तो कम से कम इतना कहा कि मैं सोचता हूं, ये तो कोई जवाब ही नहीं देते, ना हां कहा ना ना कहा, तो मैं थोड़ा नाराज हो गया। किसके साथ? अबू बकर सिद्दीक। फिर चंद दिन गुजरे थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पैगाम भेजा हजरत उमर के मकान पर कि आपकी बेटी हफ्सा से मैं निकाह करना चाहता हूं। बात समझ में आई है? अब देखिए मुझे एक वाकया सुना, इसी राज का वाकया। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही खुशी के साथ, अल्लाह के नबी हो, अपनी बेटी का निकाह, जब निकाह हो गया तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक मेरे मुलाकात के लिए आए और कहा फुला मौके पर तुमने अपनी बेटी के साथ निकाह के लिए मुझे पूछा था, मैं खामोश रहा था, शायद उसकी वजह से तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम नाराज हो गए थे और तुम मुझसे जरा अपसेट थे। तो हजरत उमर ने कहा जी हां मैं अपसेट हो गया, आपने ना मुझे हां कहा ना ना कह देते, अगर नहीं इरादा था तो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बात दरअसल ये है, मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया था कि हजरत एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने आपकी बेटी हफ्सा का जिक्र किया था, मैं कैसे आगे चलकर हां कह दूं? समझ में आई बात? मैं कैसे ना कहूं हां कहूं, यानी आपने सिर्फ जिक्र किया था तो मैं समझ गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा उनसे निकाह करने का है। अगरचि ये बात आपको मालूम नहीं थी लेकिन मुझे मालूम थी। देखा, अबू बकर सिद्दीक को मालूम थी लेकिन हजरत उमर को मालूम नहीं था। इसलिए जब आपने मेरे सामने अपनी बेटी का निकाह का पैगाम भेजा तो वो मेरे इल्म में थी, वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे पूछा था, इसलिए मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आइंदा चलकर अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह नहीं करेंगे, और मुझे अंदाजा हो जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा नहीं है, तो मैं खुद आपकी बेटी से शादी करूंगा। अगर अल्लाह की, चूंकि अल्लाह के नबी ने तस्केरा किया तो लगता है उनका इरादा है, इसलिए मैंने जवाब में ना हां कहा, ना हां कहे तो भी मसला, ना कहे तो भी मसला। कहा उस वक्त तो मैंने इसलिए नहीं हां कहा ना कि आप अगर शादी करें तो फिर मैं चुप रहूंगा, और अगर आप ना करें तो मैं ना कह देता, तो फिर ना कहा फिर आ गए। तो मैंने ना भी कहा कि अगर अल्लाह के नबी ना करे तो मैं फिर आपकी बेटी से शादी करूंगा। तो इस मौके पर हजरत उमर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बेटी का जिक्र आपके सामने किया, क्यों नहीं कहा मुझे? तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज की बात कैसे खोल सकता हूं, और यहां तो अगर बेटी का किसी से पूछा तो हम सारे मोहल्ले वाले को बता देते हैं, फुला के यहां ऐसा, फुला के यहां ऐसा। तुम्हें किसने कहा भाई कि बीबीसी बनने का, तुम्हें किसने कहा सीएनएन बनने का, तुम्हें किसने कहा किसी की बेटी के जिक्र करने का, तुम्हारी तो बेटी नहीं। फिर तो यही खुलासा है, इससे मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी की राज की बात अमानत है। राज की बात क्या है? अमानत है। अगर वो तुम्हें कह दे या फिर तुम्हें अंदाजा हो कि इसको किसी के सामने जिक्र नहीं करना चाहिए तो ना करो, खामोश रहो। इसीलिए यहां से और मसला मालूम हो गया, बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, कि अगर निकाह का पैगाम लड़के वाले भेजे या लड़की वाले भेजे। इस वाक्य से मालूम हुआ कि निकाह का पैगाम कौन भेजे, लड़के वाले भेजे या जिसका लड़का है उसके मां बाप भेजे निकाह का पैगाम, प्रपोजल दे सेंड ओ द गर्ल साइड्स। औरत के एहतराम का तकाजा तो यही है कि लड़के वालों की तरह एहतराम है, ज्यादा एहतराम और रिस्पेक्ट यही है कि लड़के वाले पैगाम भेजे और रिश्ते के लिए मुतालबा करे। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि लड़की वाले न पूछे। अगर लड़का अच्छा है और पैगाम ना आए और आपके दिल में है कि फुला मेरे फुला फैमिली में लड़का अच्छा है, तो अगर आपने भी अगर आगे चलकर पैगाम भेजा और कहा हमारा इरादा है अगर आपका लड़का चाहे तो हमारी लड़की से शादी हो जाए, कोई बुरा नहीं है, जैसा कि हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हुआ। और बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल आप मेरी बहन से निकाह कर ले। उम्मे हबीबा ने क्या कहा? आप मेरी बहन से निकाह कर ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुम ऐसा चाहती हो, यानी तुम्हारा इरादा है? इसलिए कि किसी के शोहर के निकाह में कोई दूसरी औरत आए तो यह आम तौर पर औरत का मिजाज सौकन को बर्दाश्त करने का नहीं होता है, और तुम तो आगे चलकर कह रही है जबकि मेरे निकाह में तो और भी बीवियां हैं, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन के साथ मेरा निकाह हो जाए। सो अल्लाह के रसूल मैं आपके, तो क्या उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मैं तो आपके निकाह में हूं और आप किसी और से भी निकाह तो ऐसे भी कर रहे हो, आपकी तो एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद, चूंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था उनके लिए तो नौ बीवियां थी। सो आपके निकाह में अगर कोई औरत आ जाए तो वो तो बड़ी सआदत वाली है, क्या नबी की बीवी है और उम्मुल मोमिनीन है और कयामत में अल्लाह के नबी के साथ होगी, नबी की बीवियां और वो भी हूरों की सरदार होगी, सुभान अल्लाह, देखना ही क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तेरी बहन चूंकि तू मेरे निकाह में है तो तेरी बहन मेरे लिए हलाल नहीं है, दो बहनों का एक आदमी के निकाह में होना जायज नहीं है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को अपने बुखारी शरीफ में ये चैप्टर ले आए हैं, बाबू अर्ज इंसान इब्न तहू उख तहू अला अहलिल खैर, कहा अगर कोई अच्छा लड़का हो अच्छा खानदान हो तो आप अपनी बेटी के लिए पूछें तो कोई हरज नहीं है। ये चैप्टर कायम किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने। आज हमारी समाज में इसको ऐब समझते हैं, अब लड़की बैठी रहती है किसी से पूछना ही नहीं चाहता, कोई रिश्ता ही नहीं आता, कोई रिश्ता ही नहीं आता, कोई रिश्ता ही, कहता है भाई तुमने किसी जगह तलाश भी किया, किसी से पूछा आपने? लड़की फिर बड़ी उम्र की हो जाती है, फिर जिंदगी भर उसका निकाह नहीं हो पाता, या आजकल लड़कियां शादी करना नहीं चाहती। याद रखो, जो लड़के लड़कियां शादी नहीं करते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो जो उससे एराज करे वो मेरे उम्मत में से नहीं है, वो मेरे अंदर से नहीं है। तो कितनी बच्चियां बैठी रहती है शादी, माँ बाप उनको कहते हैं अच्छे रिश्ते हैं, दे आर द गुड प्रपोजल, बट दे गर्ल्स रिफ्यूज, ऑलवेज दे रिफ्यूज। याद रखो, अल्लाह के नबी के साथ मिलना चाहती हो और उसकी उम्मत में रहना चाहती हो तो फिर ये काम करना चाहिए कि किसी तरह अपना अच्छा रिश्ता तलाश करना चाहिए, यही अच्छी अच्छा तरीका है। याद रखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत से और एक बात समझ में आई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा उनसे निकाह करने का है तो आप पैगाम देंगे ही, आप पैगाम पहुंचाएंगे ही, ये नहीं समझ, सिर्फ जिक्र किया था हजरत हफ्सा का क्या हुआ, क्या है, इंतकाल हो गया शोहर का, अकेली है, बेवा है, इसे कुछ जिक्र किया होगा, यूं नहीं कहा था साफ साफ कि मैं निकाह करूंगा, जिक्र किया। सो अगर मैं अभी से कह दूं तो उसमें क्या हर्ज है, अगर नबी ने इरादा ही कर लिया है, तज़किरा सिर्फ किया और जाकर कह रहे थे तुम्हारी बेटी सिर्फ निकाह होगा ही हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जबकि इरादा था, मालूम होता है कि अगर बाज मर्तबा किसी का इरादा हो और इरादा बदल भी सकता है, हो सकता है पहले मंगनी हो गई फिर का कुछ और मसला हो गया तो ना कह देते हैं, तो उसमें नाराज नहीं होना चाहिए, तो उसमें जो मुकद्दर में था हो गया, अब उस फैमिली से बातचीत करना छोड़ दिया, फुलां और फुलां क्या से कहां मसला पहुंच जाता है, जैसे आज रिश्तेदार में होता है कि पाकिस्तान में अपने लड़के की मंगनी कर ली, बाद में लड़के ने मना कर दिया तो पूरा खानदान अलग हो गया, अब एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते। हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, सब जगह यही मसला है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जहां अपनी बच्ची राजी हो, अच्छा रिश्ता हो, अच्छा लड़का हो, फोर्स नहीं करना चाहिए। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहां लड़की का भी कुछ हक रहता है, उसको सामने रखकर बात करनी चाहिए। तो याद रखो, हदीस से मालूम होता है भेद और राज और सीक्रेट ऑलवेज सीक्रेट होने चाहिए। हजरत साबित बुनानी की रिवायत है जो हदीस में मुस्लिम शरीफ में बुखारी शरीफ में है कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के खास शागिर्द थे हजरत अनस, तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत करते थे। हजरत अनस फरमाते एक मरतबा जबकि मैं बच्चा था, हजरत फरमाते हैं कि अलअब अल गिलमान वह आना अल अब, मैं बच्चा था और मैं बच्चों के साथ, अल्लाह के नबी कहते रहे जाओ फुला काम कर लो, खादिम से कहते थे, और मैं जाता था तो रास्ते में बच्चे खेलते थे, मैं उसके साथ खेलना शुरू कर देता, वो काम तो एक तरफ रह गया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते थे, किधर गया अनस, देखा तो वो तो खेल रहा है, तो कहा मुझे कभी डांटा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 10 साल में मुझे कभी शाउट नहीं किया, जैसे तालिब इलम से कहते हैं स्टूडेंट जाए ये काम क्या, वो भी नहीं किया तूने, किधर गया था फुला फुला, नहीं बेटे से शाउट करते किधर गया था, समझाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखो। तो एक मरतबा मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और सलाम किया, क्या किया, सलाम अलैक, सलाम किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और मुझे एक काम के लिए जाओ फुला जगह जाओ एक काम कर लो, मैं खेल रहा था वहां से मुझे, अब चूंकि मैं एक काम से गया था इस वजह से घर पर वालिदा के पास मां के पास देर से पहुंचा, कुछ काम के लिए गया तो अब मां के पास भी जाना था, चूंकि तो बच्चे थे, देर हो गई तो मेरी वालिदा ने पूछा क्यों देर से आए, मां ने पूछा तो मैंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम था तो उस काम को पूरा करने के लिए गया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा अच्छा किस काम के लिए भेजा था, मैं नहीं बताऊंगा। देखा बच्चा है, चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बात है, मां को भी मना कर दिया, आई डोंट वांट टू ओपन सीक्रेट ऑफ माय नबी, चाइल्ड है अभी तो, बच्चा है, मां के सामने भी नहीं कह रहा। यह सही हदीस है मुस्लिम शरीफ है कि यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक भेद है, ला तुखबिरन्ना बिसर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद, कहते हैं इन्हा सिर्रुन, मैं किसी के सामने नबी के भेद को नहीं खोलूंगा। एक बच्चा, आज तुम अजीज सबके सामने कह देते हैं तो उस पर मां ने क्या कहा? ठीक है, नहीं कहा तुम मेरा बेटा हो के मुझे नहीं बताता, शाउट किया नहीं, कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेद किसी को मत बताना, मां ने भी ऊपर से कह दिया, ये राज की बात है, सीक्रेट है। बाद में जब इस वाकिए को हजरत साबित बुनानी ताबिई है उनके सामने, जब हजरत साबित बुनानी इस हदीस को नकल फरमा रहे थे, उस वक्त कहा हजरत अनस ने मुझसे फरमाया, ए साबित, अगर वो बात मैं किसी से कहता तो तुझसे कहता, क्यों? तू मेरा खास शागिर्द है, तू मेरा खास चुदन है, लेकिन मैं तुझको भी बयान नहीं करूंगा। हालांकि अल्लाह के नबी तो इंतकाल कर गए, इंतकाल कर गए। क्या सहाबा थे, एक एक राज को छुपाते थे। अल्लाह अकबर। तो इस रिवायत को लाकर मुझे आपको यह बताना है कि बात सीक्रेट थिंग्स ऐसी होती है जो कभी किसी को बताई नहीं जाती। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात की खबर दी थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो बात भेद नहीं रही। अल्लाह के नबी ने कहा मेरा इंतकाल होने वाला है, इसलिए अगर उसका लोगों को कह देते कि फला वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया था तो ये नहीं कहा जा सकता ये वो तो मरने वाला मर गया। अब इसके बाद देखो, मेरे उस्ताद थे रांडेर में, बात खत्म करता हूं। तो एक मरतबा हमारे उस्ताद, हमारे शेख हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी, आज भी जिंदा है, आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। हजरत ने एक मरतबा फरमाया, हमारे उस्ताद हजरत मौलाना रजा अहमद साहब अजमेरी का इंतकाल हुआ तो उनके तीसरे दिन में ताजियत का जलसा हुआ, ताजियत का जलसा हुआ, सारे उलमा आ गए, हर एक शागिर्द ने अपने 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 उस उस्ताद का जिनका इंतकाल हुआ कोई बातें बयान करना शुरू की कि मेरे उस्ताद ऐसे थे, ये थे, ये थे, फुला 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 फुला। मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दावत बरकातुम आज भी जिंदा है, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मुफ्ती अहमद साहब ने कि एक मरतबा मैं गाड़ी में अपने शेख हजरत मौलाना रजा अहमद साहब के साथ सफर में था और बुखारी शरीफ हर वक्त साथ में रखते थे उस्ताद मोहतरम, और सफर में मुताला करते थे, सफर में मुताला करते थे, तो आप इस तरीके से करीब से एक आंख से देखते थे, ऐसे एक आंख से मुताला करते थे। तो मैं पीछे बैठा हुआ था, हजरत ने कहा, मैंने पूछा हजरत क्या बात है, आंख में कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं, 28 ईयर्स से, 28 साल से मेरी एक आंख में रोशनी नहीं है। क्या फरमाया? 28 ईयर्स से मेरी एक आंख में रोशनी नहीं है, ये मैंने, मेरा राज है, मैंने अपने बेटे कारी अब्दुल रशीद अजमेरी, जो उनका बेटा है, यहां पर भी आते हैं, उनको भी मैंने नहीं बताया है, यानी मेरे बेटे को भी मालूम नहीं है, सिर्फ तुमने मुझे पूछा है तो मैंने तुमको बताया है, तुम किसी को बताना नहीं। एक तो ये देखो कि सबर कितना है उस शेख का, सबर मौलाना अजमेरी साहब का सबर कितना है, घर में भी नहीं बताया। हम तो थोड़ा सा सर दुखता है तो वो सारा घर ऊंचा नीचा कर देते। अल्लाह अकबर। 28 साल से जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरे इस कानों ने सुना उस जलसे में, हजरत ने बयान किया अब तो हजरत का इंतकाल हो गया, मैं हजरत की एक बात आपके सामने बयान करता हूं कि हजरत को 28 साल से आंखों में रोशनी नहीं थी, किसी को नहीं बताया था, अब मैं तुम्हारे सामने उसका इजहार करता हूं, इसलिए हजरत तो चले गए। तो अगर किसी के इंतकाल के बाद अच्छी कोई बात हो, अच्छी बुरी नहीं, इसलिए कि मुर्दे को बुराई से कभी याद ना करो। एक आदमी का इंतकाल हो गया, पीछे उसके मरने के बाद कभी उसकी बुरी बात किसी के सामने बयान नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है कि मुर्दे को बुराई से याद ना करो, तुम्हें क्या मालूम अल्लाह के यहां महबूब हो गया हो, तुम्हें क्या मालूम अल्लाह के यहां वो करीब हो गया हो, और तुम उसकी बुराई करके खुद गुनाह अपने सर पर ले रहे हो, इसलिए कि तुम बुराई करोगे तो तुम माफी तो मांग नहीं सकते, मरने वाला तो मर गया, कैसे माफी मांगोगे? किससे माफी मांगोगे? कयामत के दिन वो तुम्हारी नेकियों को लेगा। इससे बेहतर मुर्दे का कभी भी, जैसे आजकल लोग है वीडियो पर या यूट्यूब पर बैठकर अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत आयशा साहबा को गालियां देते हैं। अरे भाई, जिनके बारे में बुखारी शरीफ में है ला तसुबु असहाबी, मेरे नबी कह रहे हैं मेरे सहाबा के बारे में कुछ बुरा भला न कहना। वो मेरे सहाबा अगर एक मुट्ठी जव अल्लाह के रास्ते में दे, तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे, तो भी तुम्हारा सवाब उनकी एक मुट्ठी के बराबर नहीं हो सकता है। ये बुखारी शरीफ किताब तफसीर में इस वाक्य को लिखा, किताब मनाकिब सहाबा में। तो इसलिए अगर मरने के बाद किसी ने अगर कोई वाकिया बयान किया तो हजरत साबित बुनानी कह रहे हैं कि अगर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु में कितना राजदार थे, लेकिन अपनी मां के सामने भी उसका इजहार नहीं किया। तो आज के सबक में जो खास बात थी जो मैंने बयान करनी थी, एक मौजू था राज की हिफाजत करना, किसी के राज को किसी के सामने न खोलना। सुनने वाले बात, हम किसी के राज को खोलेंगे तो फिर अल्लाह हमारे राज को भी क्या कर देगा, फाश कर देगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। या अरहमुर राहिमीन, या ذل الجلال والإكرام, या अकरमुल अकरमीन, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما, اللہ ہمارا بیٹھنا سننا بولنا اے اللہ تو قبول فرما, اے اللہ میں اخلاص نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما, اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, قبر بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, اے اللہ جنت بھی عطا فرما, اے اللہ جہنم سے بچا لینا, تیرے غضب سے بچا لینا, تیرے غصے سے بچا لینا, اے اللہ ہمارے گھر کو آباد فرما, اے اللہ ہمارے گھر کو دین سے آباد فرما, دینی مسائل دین کے کاموں سے آباد فرما, ہمارے گھر کو اے اللہ اے اللہ اے اللہ صحابہ کرام کے گھر جیسا نمونہ بنا, ہمارے بچوں کو, ہمارے بچیوں کو, ہمارے گھر والوں کو, سب کو دین کی طرف متوجہ فرما, نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرما, برائیوں سے بچا, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اللہ ہماری اولادوں کے سینے دین کے لیے کھول دے, دین کے لیے کھول دے, ان کے دماغ کو دین حاصل کرنے کے لیے کھول دے, اللہ دنیا سے زیادہ دین کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, ہماری ہماری اعلی اولاد کی اور ہماری نسلوں کی جان مال آبرو عزت ایمان کی حفاظت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو ماں باپ مشکلوں میں پھنسے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, جو بے قصور جیلوں میں پھنسے ہیں جیلوں میں بند ہیں اللہ ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما, اے اللہ جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما, سود سے, غیبت سے, چوری سے, ڈکیتی سے, حرام سے, حرام کاموں سے اللہ ہماری ہماری آل اولاد کے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, تا قیامت یا اللہ ہم سے لے کر تا قیامت ہماری نسلوں میں اولیاء کاملین, علماء, صلحاء, نیک اور صالحین اور حفاظ قرآن کرام پیدا فرما, یا اللہ یا رحمان جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ دور دور سے لوگ آتے ہیں خاص کر ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر آتی ہے صرف تیرے نبی کی محبت میں آتی ہے, اے اللہ ان کے سینوں میں تیری محبت کا نور بھر دے, تیری محبت کا نور بھر دے, ان کے گھروں میں, ان کی زندگیوں میں نور عطا فرما, اللہ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے ہماری دعاؤں کو ان آمین کہنے والے اور آمین کہنے والی میری مائیں اور بہنیں ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ قبول فرما, وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم اجمعین.